अबीर ने अचानक अपने दोनों हाथ आस्था के कंधों पर रख दिए और शांत करते हुए बोला, रिलैक्स बटरफ्लाई, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब आगे, मैंने सारी बातें पता लगवा ली हैं कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती अरमान सिंघानिया के साथ हुई है और तुम तो इस शादी में रहना भी नहीं चाहती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अबीर सिंह राठौड़ इतना नॉर्मल बर्ताव इसीलिए कर रहा था क्योंकि जब वो सिंघानिया मेंशन से हल्दी के फंक्शन से वापस गया था तब उसने आस्था के बारे में सारी बातें पता लगवा ली थीं कि आस्था किस तरह से गांव से प्रियंका की शादी अटेंड करने के लिए आई थी, लेकिन शादी के टाइम पर प्रियंका के भागने की वजह से आस्था को वो शादी करनी पड़ी थी, और किस तरह से अरमान ने उस पर शादी के पहली रात ही फायरिंग कर दी थी, और किस तरह से अरमान ने उसे कितनी बार नीचा दिखाया था और अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया था। तो तब से अबीर सिंह राठौड़ का दिल हल्का फुल्का हो गया था कि आस्था के साथ जबरदस्ती शादी हुई है तो वही जबरदस्ती की शादी से आस्था को निकालकर अपनी जिंदगी में ले आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग में तो यही चल रहा था, तो इसी चक्कर में वो सीधा सीधा अरमान सिंघानिया से टकराने के लिए आ पहुंचा। जैसे ही अरमान ने ये देखा कि अबीर ने आस्था के कंधों पर हाथ रखा है, उसका कंट्रोल खुद पर से हट चुका था और अचानक अरमान ने मुड़कर अबीर की गर्दन को पीछे से ही कसकर पकड़ लिया था। तब तक अबीर के सभी आदमियों ने आकर अरमान को गन पॉइंट पर ले लिया था, लेकिन अरमान पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने जोरों से अबीर की गर्दन को मरोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अबीर ने अरमान के इस एक्शन के बाद भी अपने हाथों को आस्था के कंधे पर से नहीं हटाया था। उल्टा वो गला दबने की वजह से थोड़ा कम बोल पा रहा था, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके दर्द भरी आवाज में बोला, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आस्था, यानी मेरी बटरफ्लाई, बहुत जल्द मैं तुम्हें अरमान सिंघानिया की जिंदगी से लेकर चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तुम फिक्र मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जैसे ही अबीर ने ये बोला, अरमान की पकड़ अबीर के गर्दन पर और ज्यादा तन चुकी थी। तब जाकर अबीर ने आस्था के कंधों पर से अपने हाथ हटाए थे और पीछे मुड़कर बदले में उसने भी अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए अरमान की गर्दन को पकड़ लिया था। अब दोनों बड़ी ही बुरी तरह से एक जगह खड़े होकर अरमान अबीर के गर्दन दबा रहा था और अबीर अरमान की गर्दन दबा रहा था। तब तक मारिया और टाइगर ने भी अपनी बंदूकें निकालकर अबीर के आदमियों की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हुए थे। अरमान और अबीर में टक्कर चल रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान तुरंत वहां आ गए थे। ध्रुव और आहान अबीर को पीछे हटाने लगे थे और आकाश और सुमित आकर अरमान को पीछे हटाने लगे थे। उन्होंने दोनों को रुकने के लिए बोलना शुरू कर दिया था। वहीं आस्था ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी और उसने जोरों से अपने दोनों हाथों को कान पर रखकर डरकर चीखी थी। आस्था की चीखें सुनकर अरमान और अबीर दोनों की एक दूसरे पर पकड़ ढीली हो गई थी और दोनों मुड़कर आस्था को देखने लगे थे। आस्था चीख मारते ही बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तुरंत अरमान ने जाकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। और वहीं अबीर भी अब आस्था को इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर परेशान हो गया और थोड़ा सा उसके करीब जाकर वो भी आस्था को संभालना चाहता था, लेकिन अरमान उसकी परछाई भी आस्था पर पड़ने नहीं देना चाहता था। और आस्था को गोद में ले जाकर उसने जितने भी सोफे पर गिफ्ट रखे थे उन सबको नीचे फेंक दिया और आस्था को संभालकर सोफे पर लेटा देता है और फिर पलटकर अबीर की ओर झल्लाते हुए देखने लगता है। वहीं अबीर खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, मैं जानता हूँ तुमने जबरदस्ती मेरी बटरफ्लाई को अपनी जिंदगी में रखा हुआ है, लेकिन याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं बहुत जल्द उसे तुमसे छीन लूंगा, समझे तुम। तभी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि अगर वो दोनों को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के एक बार फिर से जान के प्यासे बन जाते और एक दूसरे की जान लेकर ही मानते। तभी सुमित ने अबीर की ओर देखकर कहा, अबीर सिंह राठौर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो अरमान की पत्नी है, तुम इस तरह से उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तभी अबीर हल्के से पोलाइट वॉइस में बोला, देखो वो लड़की, ये लड़की मेरी जिंदगी बन चुकी है, इसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, और वैसे भी अगर वो अरमान सिंघानिया से इतना डरती है तो वो मुझसे प्यार जरूर करेगी, वो अरमान से प्यार नहीं करती है, सिर्फ वो उससे डरती है। अब अरमान खा जाने वाली नजरों से अबीर को देख रहा था और अगले ही पल खड़े होकर बोला, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार करती है, ये कहना चाहते हो क्या तुम। तभी अबीर अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती या नहीं करती, लेकिन एक बात जान लो अरमान, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा, वो प्यार से, और तुमने सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर उसे अपने पास रखा हुआ है, और जब मैं उसे प्यार करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, ये कहते हुए अबीर आस्था को देख रहा था, लेकिन अरमान तुरंत उसकी नजरों के सामने जाकर खड़ा हो गया था और बोला, अपनी हद में रहे अबीर सिंह राठौर, इससे पहले कि मैं तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े कर दूं कि तुम्हारे पिता को टुकड़े जोड़ने में भी सालों लग जाएं, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया है कि उसे जमीन के बदले में उसके बेटे को कुछ नहीं करूंगा, वरना जिस दिन तुमने मेरी बीवी पर पहली बार नजर डाली उसी दिन मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर देता। फ्लैशबैक। जिस जमीन को लेकर अबीर और अरमान में लड़ाई हुई थी, उस जमीन को अमरिंद्र से अरमान ने उसके बेटे की जान के बदले ही हासिल किया था। उसने अबीर को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया था कि उन्होंने खुद ब खुद वो जमीन अपने बेटे अबीर सिंह राठौर की जान के बदले अरमान को दे दी थी। फ्लैशबैक एंड। एक यही वजह थी कि अरमान अभी तक अबीर सिंह राठौर की जान नहीं ले रहा है, वरना आस्था के ऊपर गंदी नजर रखने वालों की वो आंखें तक निकाल लेता। और यहाँ तो अबीर ने सीधा सीधा आस्था को प्रपोज कर दिया था और उसे अपना बनाने के ख्वाब देखने लगा था, लेकिन फिर भी अरमान ने उसे जिंदा छोड़ रखा था सिर्फ एक वादे के रहते। जैसे ही अरमान ने उसे वादे की याद दिलाई, अबीर की आंखों में खून उतर आया था और वो बोला, अरमान सिंघानिया, बहुत जल्द मैं अपनी जमीन के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी तुमसे छीन लूंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो रोक कर दिखाना। तभी अरमान सिंघानिया ने अबीर के कॉलर को ठीक करते हुए बोला, अच्छा बहुत ताकत है ना तुम में, ठीक है जो तुम्हारा दिल आए करो, मेरे कोई भी आदमी तुम्हारी जान नहीं लेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से मुझसे सब कुछ छीनते हो। ऐसा बोलकर अरमान उसकी ओर नफरत से देखने लगता है। तभी आहाना ध्रुव ने अबीर को वहां से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया था और अबीर सब पर एक नजर डालता हुआ एक नजर बेहोश आस्था को देखकर जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर निकल चुका था। वहीं उसके जाने के बाद आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान चारों ने अरमान को पीछे से पकड़ लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त अरमान की फिजिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है और शायद अब उसकी मेंटली कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तब उन चारों ने अरमान को अच्छे से सहारा दिया था और उसे एक साथ आस्था के पास बिठा दिया था और साथ ही साथ मारिया को उन्होंने इशारा कर दिया था कि वो डॉक्टर को बुलाए और आकर आस्था का ट्रीटमेंट करवाए। तब तक आस्था को उन्होंने अरमान के ही प्राइवेट केबिन में, जो प्राइवेट रूम था, उसमें शिफ्ट करवा दिया था और वो सब अरमान को लेकर सोफे पर बैठ गए थे।
तभी आकाश ने सुमित की ओर देखा और ध्रुव, आहान एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। तभी सबने एक साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी, क्योंकि वो सब आज अरमान को समझाना चाहते थे। तभी आकाश ने कहना शुरू कर दिया, अरमान मेरी बात ध्यान से सुनो, आस्था आपसे बहुत प्यार करती है, आस्था तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और आस्था की मोहब्बत बेदाग है, उसका किसी तरह का कोई कसूर नहीं है। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उससे प्यार करने लगे। तो तुम्हें अबीर सिंह राठौर की बातों का असर आस्था पर नहीं डालना है। आस्था को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों के बीच क्या चैलेंज हुआ है। आस्था को प्यार से अपने पास रखो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उसके बाद सुमित ने आगे कहना शुरू कर दिया था, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है अरमान, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो जमीन भी तुम्हारी है और आस्था भी तुम्हारी है। तभी ध्रुव और आहान बोलते हैं, यस भाई डोंट वरी, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, हमने खुद उनकी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार देखा है और वो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके दुख सुख में आपकी साथी बनेगी, हमें पूरी उम्मीद है, भाभी बहुत प्यारी है। तभी अरमान ने चारों को बारी बारी से देखता है और उन चारों की ओर देखकर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट वरी मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा, उन चारों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसके बाद अरमान ने उन चारों की ओर देखकर कहा, आज जो कुछ भी ये हुआ है उसके बाद से आस्था काफी ज्यादा डरी हुई है, एक काम करो, घर पर अच्छे से आस्था के वेलकम की तैयारी करो, आस्था जब घर आए तो उसे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएं, समझ रहे हो मेरी बात। अरमान की बात सुनकर उन चारों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उन्होंने तुरंत हां में सर हिला दिया था। तभी ध्रुव बोला, अगर भाई आप इजाजत देते हो तो आज शाम को मेहंदी का फंक्शन कर लें या फिर कुछ और। ध्रुव ने इतना ही कहा था कि तभी अरमान ने उसकी ओर अपना सर दोनों तरफ हिलाकर इशारा कर दिया था, ये आइडिया भी बिल्कुल ठीक रहेगा, आज मेहंदी के फंक्शन की तुम लोग तैयारी करो, आस्था के ठीक होते ही मैं उसे लेकर आता हूं। ऐसा बोलकर वो चारों को देखने लगा था और वो चारों भी खुशी से वहां से चल दिए थे। उन चारों के जाने के बाद अरमान, जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल नॉर्मल में बात कर रहा था, अचानक से उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था और वो मन ही मन में बोला, क्या मैं अपनी बीवी के साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं कर रहा हूं? क्यों इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ अब नॉर्मल हो रहा हूं? लेकिन फिलहाल मारिया जल्दी ही एक डॉक्टर को लेकर वहां मौजूद थी और जल्दी से आस्था का चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शंस किए थे जिससे आस्था थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद होश में आ जाना था। वहीं मलाइका अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। मलाइका को ये तो पता था कि अरमान सिंघानिया आज ऑफिस में आया है, लेकिन उसकी एक भी झलक वो देख नहीं पाई थी। वो 10th फ्लोर तक तो आ गई थी, लेकिन 12th फ्लोर पर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से उसे अरमान ने 12th फ्लोर से जाने के लिए कहा था तब से उसने हिम्मत ही नहीं हुई कि वापस से वो 12th फ्लोर पर जाए, क्योंकि वो अरमान सिंघानिया के आसपास रहना चाहती थी। अगर वो इस तरह से अरमान की बात नहीं मानती है तो अरमान एक झटके में उसे जॉब से निकाल सकता था। तो इस बात का रिस्क न लेते हुए मलाइका अब बेचैनी से 10th फ्लोर पर इधर उधर टहलने लगी थी। थोड़ी देर बाद टाइगर और मारिया भी वहां आ गए थे। मलाइका उन दोनों से ही सवाल करना चाहती थी कि आखिर क्या हो रहा है, क्या क्योंकि जिस तरह से कितने सारे गार्ड्स अबीर सिंह राठौर के साथ ही साथ ध्रुव, आकाश, सुमित, उन सबको तो मलाइका ने देख लिया था, तो इसीलिए उसके मन में कितने सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है इस तरह से। लेकिन वो कुछ भी किसी उन दोनों से कह नहीं पाई थी, क्योंकि वो दोनों तो एकदम सपाट चेहरा लिए जाकर एक जगह बैठ गए थे। वहीं देव तुरंत अरमान के सामने मौजूद था। अरमान ने जो इम्पोर्टेंट काम के लिए देव को ऑफिस भेजा था वो काम हो गया था, और उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, तो वो मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि अरमान के ही ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में होनी थी। सारी मीटिंग की तैयारी ऑलरेडी देव ने कर ली थी, हालांकि आस्था तो अभी आराम कर रही थी, तो इसीलिए अरमान ने सोचा कि तब तक आस्था आराम कर रही है तब तक क्यों ना वो मीटिंग अटेंड कर लें, क्योंकि इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट अरमान के लिए बेहद जरूरी था, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट रायचंद परिवार को चला जाता। लेकिन रायचंद परिवार को अरमान इतनी सी भी कामयाबी नहीं देना चाहता था, इसीलिए जल्दी ही अरमान अब अपने ऑफिस के 7th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद था। और वहीं मलाइका अब खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उस मीटिंग में मलाइका भी मौजूद थी। वो तो अरमान को देखने के लिए ही ऑफिस आया करती थी। अब अरमान को अपने सामने देखकर मलाइका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कभी अरमान के बड़े ही हैंडसम से चेहरे को देख रही थी तो कभी सूट के अंदर से ही जो उसकी शानदार बॉडी रिवील हो रही थी उसे अश्योर कर रही थी। वेल, अरमान अब पूरी तरह से अपनी मीटिंग में बिजी हो गया था। वहीं दूसरी ओर आस्था के कुछ 20 से 25 मिनट बाद आंखें खुलने लगी थीं।